हॉल गुलजार था। ढोल की थाप के साथ कोई महिला गा रही थी, सजन आयो सजनी के अंगना, रस्म निभावे आज। हर चेहरे पर हंसी थी, हर जुबां पर बधाई। लेकिन उन सबके बीच शामली अपनी जगह पर बैठी, अब हल्दी की थाली लिए हुए, बिना कोई भाव जताए, जैसे वो रस्में किसी और के लिए हो रही हों। विश्वनाथ जा चुका था और अब आर्यन भी चुपचाप निकल गया था। किसी ने ज्यादा गौर नहीं किया उसकी मौजूदगी या गायब होने पर। वो हमेशा ही थोड़ा किनारे रहा था, सौम्य, शांत और अनकहा। महिलाओं ने शामली की हथेलियों पर चुटकी भर हल्दी लगाई, एक ने उसके गालों पर भी चिपका दी। नजर न लगे, बहुत भोली लगती है दुल्हन। एक बुआ ने पीछे से चुटकी ली, भोली तो है पर किस्मत देखो जरा, पहली रस्म में ही दूल्हा भाग गया। उनकी हंसी पास बैठी औरतों ने बांटी, लेकिन शामली के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं आई, बस हल्की सी गर्दन झुकी, जैसे खुद को आवाजों से काट लेना चाहती हो। किसी ने हंसी में कहा, अरे मुस्कुरा भी लिया करो, दुल्हन लगती हो, अदालत की गवाह नहीं। शामली ने जबरन होठों को खींचने की कोशिश की, एक कमजोर मुस्कान जो कुछ पलों में खुद ही बिखर गई। वो एक दो जगहों पर हल्की हंसी में शामिल भी हुई, ताकि किसी को लगे कि वो नाराज नहीं, दुखी नहीं। पर उसके मन में तो हर वाक्य, हर आहट के पीछे विश्वनाथ के शब्दों की परछाइयां थीं। माँ, ये शादी मैंने आपकी जिद पर की है, मुझसे मत कहिए। मुझे ना इस शादी से कुछ लेना है, ना इन तमाशों से। किचन से घेवर और मटर पनीर की खुशबू आ रही थी। महिलाएं बातें करती हुई अंदर बाहर घूम रही थीं। बच्चों का झुंड हलवा लेकर लड़ रहा था। शामली उठी। उसकी आंखों में एक बोझ था जिसे किसी ने नहीं पढ़ा। उसने जरा जरा सा थाली संभाला और फिर खड़ी हो गई। माँ ने देखा, वो सब संभाल रही है, मुस्कुराने की कोशिश कर रही है और इस नाटक में शामिल होने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन आंखें, वो अब भी गीली थीं, धुंधली, जैसे कोई भूतिया सपना पीछा कर रहा हो। उधर माँ ने एक पल के लिए अपनी नज़र हटाई और गहरी सांस ली। उनके मन में अजीब सा द्वंद्व था। बेटे की सख्ती और बहू की चुप्पी के बीच वो खुद को किसी सजा में महसूस कर रही थी। क्या यही चाहती थी मैं, उन्होंने खुद से पूछा। क्या ये वही घर है जो मैंने अपनी बहू के लिए सोचा था। धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ीं, मुंह दिखाई, मिठाई बांटना, तस्वीरें खिंचवाना। शामली ने हर जगह खुद को निभाया। वो हंसी भी, दो तीन जगहों पर किसी महिला के जोक पर ठहाका भी लगाया। सबको लगा, अरे नई दुल्हन धीरे धीरे घुल रही है। किसी ने कहा, चलो अच्छा है, लड़का थोड़ा कठोर है लेकिन लड़की बहुत समझदार निकली। पर हकीकत ये थी, वो हंसी नकली थी। हर बार जब कोई उसके सामने विश्वनाथ का नाम लेता, उसकी उंगलियां साड़ी के किनारे को जोर से भींच लेती। किसी ने नहीं देखा, पर उसकी हथेलियों की मेहंदी अब उखड़ने लगी थी, शायद पसीने और घबराहट से। जब रस्में पूरी हुई तो हॉल धीरे धीरे खाली होने लगा। बच्चे थककर अपने माँ बाप की गोद में सो गए थे, रिश्तेदार विदाई के आलिंगन में लग गए थे और स्टाफ अब मेजें समेटने लगा था। शामली अब कमरे में अकेली थी, वही दुल्हन वाला कमरा। दीवार पर रेशमी पर्दे, बिस्तर पर फूलों की चादर और दरवाजे के पास एक बड़ी आईने वाली अलमारी। वो धीरे धीरे आईने के सामने गई, घूंघट हटाया और खुद को देखा। चेहरा थका हुआ, आंखें सूजी हुई, लेकिन उनमें अब एक अजीब सी जिद थी। तुम मेरी जिंदगी हो सकते थे, पर तुमने सिर्फ तमाशा देखा, उसने खुद से कहा, जैसे किसी से नहीं विश्वनाथ से बात कर रही हो। आर्यन का कमरा, एक दूसरा सन्नाटा। घर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में, जहां मेहमानों की नजरें नहीं जातीं, वहां था आर्यन का कमरा। कमरा शांत था, बिस्तर सजा नहीं था, एक तरफ खिड़की से आधा चांद झांक रहा था। आर्यन बिस्तर पर बैठा था, फोन उसके हाथ में था। स्क्रीन पर उंगलियां बार बार एक ही तस्वीर पर टिक रही थीं, शामली की हल्दी के समय की तस्वीर, जब उसके गालों पर हल्दी थी और आंखों में छलकती चुप्पी। आर्यन की आंखों में न हंसी थी न दुख, बस एक रहस्यमय शून्यता। वो तस्वीर जूम करता, रुकता और फिर धीरे से बगल रखे तकिए पर फोन रख देता, फिर धीरे से बुदबुदाया, तुम्हें देखकर कुछ समझ नहीं आया, या शायद सब कुछ समझ आ गया। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, फिर सिर्फ खिड़की की हवा और आर्यन की गहरी सांसें, जैसे एक कहानी वहीं से शुरू होनी हो। मन ही मन कहा, तुम्हें मैं भूल नहीं सकता हूँ, तुम मेरा पहला और आखिरी प्यार हो।